सुत्तम, किसको कहा? सुत्तम। अब पंद्रहवा अध्याय में जो पुरुषोत्तम योग कहा गया, इसमें तीन पुरुष बताए गए। कितने पुरुष? एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को ही पुरुषोत्तम कहा गया। उत्तम पुरुष को क्या कहा गया? पुरुषोत्तम। तो तीन पुरुष में हमें समझना होगा कि वास्तव में क्षर पुरुष कौन सा है, अक्षर कौन है और उत्तम जो पुरुषोत्तम है वो कौन है। यहाँ पर पहला श्लोक भगवान शुरू करते हैं और भगवान कहते हैं, मैं संसार रूपी वृक्ष का वर्णन करता हूँ। अर्जुन तुम बराबर ध्यान से सुनो, या अगर बराबर तुमने इसे वेद भी अगर जान लिया तो तुम वेद भी बन जाओगे, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे, तुम्हारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी जन्म मृत्यु खत्म हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते ऊर्ध्व मूलम दस्साखा मत्स्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सभेदवित। यस्तम वेद, इसको जो जानता है वह वेदवित है, वह ज्ञानी है, वह सब कुछ है, इस तत्व को जानता है। लेकिन बहुत विचित्र या संसार रूपी वृक्ष, यहाँ तो बहुत चार है ना, लेकिन भगवान ने पीपल के वृक्ष का यह उल्लेख किया। कौन सा वृक्ष? ये अमेरिका में तो नहीं होता है, लेकिन पीपल का वृक्ष, क्योंकि भगवान ने दसवें अध्याय में अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, भगवान ने कहा जितने वृक्ष हैं दुनिया में, जगत में, ब्रह्मांड में, उसमें मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, मैं पीपल का वृक्ष हूँ। उसे वासुदेव कहा गया। क्या कहा गया? तुम लोग पीपल की पूजा करते हैं ना, वो वासुदेव है। भगवान ने कहा अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, मैं तो वासुदेव हो गए। यहाँ इसी तरीके से इस संसार रूपी वृक्ष का नामकरण किया गया। संसार रूपी वृक्ष कैसा है कि उसका ऊपर मूल है, ऐसा झाड़ देखा तुम लोगों ने? झाड़ का मूल किधर होता है? ऊपर के नीचे, नीचे। अब ये तो बड़ा विलक्षण है, ऊर्ध्व मूलम अधःशाखा, उसकी शाखाएं नीचे है, मूल ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम अधःशाखा स्वत्थम अस्वत्थम प्राहुरभ्ययम्, प्राहु अभ्ययम इसके विशेषण है। लेकिन अस्वत्थ शब्द का मतलब है पीपल का वृक्ष है, और यह ऊपर मूल वाला है, नीचे शाखा वाला है। ऐसा जो अस्वत्थ है, अस्वत्थ का मतलब जो कल ना हो, जो कल अस्वत्थ का मतलब घोड़ा भी होता है, घोड़ा भी, और इसके न सो, इसके अस्वत्थ के कई अर्थ बताते हुए, क्योंकि संसार आज है कल नहीं है, संसार आज है कल, और ये संसार का मतलब अपने आज है कल ठिकाना है क्या? है ठिकाना नहीं। संसार यह परिवर्तन वाला है, संसार यह विकारी है, संसार यह दृश्य है। जो वस्तु दृश्य होगी, जो वस्तु विकारी होगी, जिसका जन्म होगा वह अनित्य होगा। क्या होगा? इसीलिए अनित्य। तुम कहोगे महाराज संसार तो नित्य है, लेकिन अनित्य हमने ये मिथ्या नहीं कहा गया, इसे कहा गया है कि यह जन्म तद अनित्यम, जो जन्य है वो नित्य है, यद विकारी तद मिथ्या, यद दृश्यम तद अनित्यम। इसलिए तीनों वस्तु इसमें घट गई, विकारी है नहीं। कैसे विकार है इसमें? अरे सुबह से दोपहर हो गया, फिर शाम हो गया, फिर रात्रि हो गई, विकार चलता रहता, घटता जाएगा, घटता जाएगा ना। तुम्हारे बरस घटते की है बढ़ते? इसलिए यह संसार घटने बढ़ने वाला है, यह संसार विकार युक्त है, यह संसार दृश्य है दिखने वाला दृश्य, यह संसार उत्पन्न होने वाला है। इसलिए जो वस्तु उत्पन्न होगी उसका नाश भी, और जिसका उत्पत्ति ही नहीं उसका नाश कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए यह जगत को शास्त्रों में, महापुरुषों ने, संतों ने, उन ऋषि मुनियों ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत ये अनित्य है, मिथ्या है, इसमें ज्यादा स्नेह मत करो, इससे ज्यादा बांध मत भरो, इसमें ज्यादा आसक्त मत बनो। ज्यादा आसक्त इसमें, क्योंकि एक दिन दगा करेगा, कहेगा कि नहीं, और एक दिन तुम्हें रुलाएगा। क्या कहेगा? रुलाएगा। इसका स्वभाव ऐसा है, इसका क्या है? जैसे मनुष्य का, लोग कहते हैं मरता क्यों है? अरे भाई इसका स्वभाव है मरता क्यों? क्या जवाब है बोलो? किसी ने कहा मरा तो मरता क्यों? अरे इसका स्वभाव है मरना जीना, मरना जीना इसका। तो जो वस्तु स्वभाव है उसमें तर्क क्या करोगे कि क्यों ऐसा? एक स्वभाव है इस जगत का, ये स्वभाव है, वह स्वभाव से चलेगा। लेकिन स्वभाव के अंदर जो तत्व है उसे हमें जानना है, उससे हमें ममता करना है, उससे हमें प्रेम करना है। उसके अंदर जो शाश्वत वस्तु है, इस जगत के अंदर जो वस्तु है, यह जगत का नियंत्रण है। जगत में जो चेतन तत्व है, जो ब्रह्मांड में है, वो इस पिंड में है। ब्रह्मांडे सो पिंडे, बराबर। जो विराट में है वही तुम्हारे शरीर में है। इसलिए इसके अंदर वाले तत्व को उर्धमो लमदा शाखा। अब जगत का मूल कहाँ है बोलो? अरे परमात्मा से उत्पन्न हुआ ना। कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो परमात्मा को कहाँ कहा गया? लोग कहते थे यहां हाथ रख के बोलना। कहाँ हाथ रख के? परमात्मा का मतलब केवल ऊपर रहता ही नहीं, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा है। लेकिन उत्कर्ष का मतलब है, ऊपर का मतलब है, जो उत्कर्ष वाला है, जो उन्नति वाला है, जिसे हमें अधो मार्ग कहा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति कामसा। तो ऊपर नीचे की बात जो कही गई है, ऊपर का मतलब है जो सर्वोपरि उन्नत है। क्या है? सर्वोपरि उन्नत, उससे आगे कोई नहीं, उससे आगे सबसे परे है, माया से परे है, जगत से परे है, सबसे परे है। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? परब्रह्म। क्या पड़ा? पर, सबसे पर है। इसलिए ऊर्ध्व का मतलब है वह उत्कर्ष जो है, वह उन्नत इतना है, वह सबसे परे है, उसमें यह जगत का मूल है। क्या है? जगत का मूल। जगत तो इसे उत्पन्न हुआ ना। इसलिए लोग, कितने लोग इस जगत के बारे में आज के बुद्धिवाद क्या कहते हैं कि भाई ये स्वभाव भी स्वरम कालम यत्रच्छा नियति तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृति प्रतुदर्शिना। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ईश्वर ऊश्वर कुछ नहीं है, ये स्वभाव से चल रहा है। स्वभाव ईश्वरवादी कहते नहीं ईश्वर बगैर नहीं होगा है। जैसे किसी चित्र को बनाने को चित्रकारम बिना चित्रम स्वयमेव भवेत तथा, अगर चित्र बनाने वाला चित्रकार चाहिए, गया बनाने वाला कोई कुमार चाहिए, इसी तरीके से इस जगत को बनाने वाला भी कोई है, वही ईश्वर है। लोग कहते स्वभाव से चलता है, स्वभाव भी परम कालम, कहते हैं कि काल काल के द्वारा अपने मानते हैं ना काल को, समय को, ये समय से काल की मर्यादा से चलता है। स्वभाव भी सर्व कालम यद्रच्छा, या यद्रच्छा ये नियति, एक नियम बना दिया है, नियति बनी है कि सुबह से शाम होगा, दोपहर होगा, रात होगा, एक ऐसा नियति बन गई है। कुछ लोग प्रकृति को मानते, प्रकृति से ही चल रहा है। यद्रच्छा नियति तथा परिणामम, परिणाम बाद भी है, जैसे दूध का परिणाम दही, दही का परिणाम मक्खन, मक्खन का परिणाम घी, ये क्या है परिणाम। तो ये जगत परिणाम बाद है, परिणाम से होने वाला है, ये विकार बाद है। लेकिन यह जरूर है कि इस जगत को समझने के लिए यह जरूर है किसका संबंध परमात्मा से है, इसका संबंध। इसलिए उद्धमूला, इसका मूल कहाँ है, परमात्मा से है, जो सर्वोपरि उन्नत है, सबसे परे है, वह इसका मूल है। उद्धमूल मद शाखा, और शाखा सारी जगह फैली हुई है, एक जगह नहीं है, ये चौदों भुवन में इसकी शाखाएं फैली हुई है। ऐसा जो अश्वत्थ नाम का वृक्ष है, भगवान ने नामकरण किया अश्वत्थ वृक्ष की बहुत सी विशेषताएं, उन विशेषताओं के द्वारा ही परमात्मा ने इसका नामकरण किया। इसमें कई वस्तुएं, पीपल का वृक्ष जो उगता है ना, कैसे उगता है, उसका बीज पक्षी खाता है, और पक्षी जब बीज करेगा तो ये होगा, ये द्विज बन गया। ये चेतन के प्रभाव से यह पीपल का वृक्ष होता है, ये वासुदेव, इसके अनेक विशेषताएं हैं, इनके पत्तों की विशेषता है, इसके जड़ की विशेषता है, इसके फल की विशेषता है। इसलिए यह वृक्ष ऐसा जो है, यह प्रसंग अब कल करेंगे, अपना समय हो गया, अभी आरती बाकी है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। और यह प्रसंग में एक श्लोक रोज चलेगा, एक